दिन भर 20 जनवरी दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के प्रस्ताव को किया खारिज। शटडाउन खत्म करने के लिए प्रवासी नीति में नरमी की थी पेशकश।
इट इज ए कंपैशनेट रिस्पांस टू द ऑनगोइंग ट्रेजेडी ऑन आवर साउथर्न बॉर्डर।
बीएसपी प्रमुख मायावती पर बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी। महिला आयोग ने लिया संज्ञान, राजनीति में उबाल।
दिखाता है कि बीजेपी कितना हताश हो गई है, कितना निराश हो गए।
और व्यास सम्मान हासिल करने वाली चर्चित लेखिका ममता कालिया से बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार की खास बातचीत।
पहली बार महिलाओं की बातों को ध्यान से सुना जा रहा है, उनकी पुस्तकें बिक रही है। महिला जीवन के इतने सारे संघर्ष झेलती है कि...
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अमेरिका में सरकार की आंशिक कामबंदी को खत्म करने के इरादे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने खारिज कर दिया है। समझौते के इरादे से ट्रंप ने प्रवासन नीति को लेकर ये प्रस्ताव भेजा था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मंगलवार को शुरू होने वाले रूस दौरे के विरोध में मॉस्को में लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग विवादित द्वीपों को जापान को सौंपे जाने की संभावनाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं। आबे ने इस महीने अपने पिता की कब्र पर शपथ ली थी कि वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान से सोवियत संघ के कब्जे में गए 4 द्वीपों को वापस लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुझाव दिया है कि इस मामले को सुलझाने के लिए बिना कोई शर्त थोपे शांति समझौता किया जाए। दोनों देशों के बीच ये विवाद कुरील द्वीपों को लेकर है जिन्हें जापान अपना हिस्सा मानता है, लेकिन रूस का कहना है कि ये द्वीप पूर्वी हिस्से में उसकी रक्षा के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सदर्न अफ्रीकन रीजनल बॉडी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के विवादास्पद चुनावों में जीत हासिल करने वाले फेलिक्स शिशेकेडी को बधाई दी है और कांगो के लोगों से अपील की है कि वो उनकी जीत को स्वीकार करें। इस तरह से चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे मार्टिन फायुलू को झटका लगा है। फायुलू ने इन राष्ट्रपति चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए जनता से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी। अब कांगो की शीर्ष अदालत द्वारा शिशेकेडी को विजेता घोषित करने के बाद फायुलू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की अपील की है। उधर अदालत का फैसला आने के बाद शिशेकेडी ने कहा, आज शाम कांगो की जीत हुई है, ये एक या दूसरे खेमे की जीत नहीं है। मैं कांगो के लोगों को एकजुट करने को लेकर प्रतिबद्ध हूं। कल से हम ऐसे कांगो के निर्माण में जुटने जा रहे हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कबीलावाद या नफरत नहीं होगी। हम मजबूत और एकजुट कांगो बनाएंगे और विकास पर ध्यान देंगे। हम शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। ये थे कांगो में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले फेलिक्स शिशेकेडी के शब्द। ब्रिटेन के मंत्री लियाम फॉक्स ने आरोप लगाया है कि कुछ सांसद ब्रितानी लोगों से ब्रेक्जिट को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एंड्रयू मार के शो में कहा कि मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि आयरलैंड के साथ लगती सीमा पर बैरियर को लेकर वैकल्पिक रास्ता सुझाया जाए, मगर उन्होंने कहा कि 2016 में हुए जनमत संग्रह ने सरकार को जो अधिकार दिया है, सांसदों को उसमें अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए।
Parliament has not got the right to hijack the Brexit process because Parliament said to the people of this
संसद
country,
को ब्रेक्जिट प्रक्रिया को हाईजैक करने का अधिकार नहीं है क्योंकि संसद ने देश के लोगों से कहा था, हम आपके साथ एक समझौता करेंगे, आपको फैसला लेना होगा और फिर हम उस फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जनमत संग्रह के नतीजों का विरोध कर रहे हैं, वो ब्रेक्जिट को हाईजैक करके लोगों की इच्छा की राह में मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये थे ब्रितानी मंत्री लियाम फॉक्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने कहा है कि राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में एक धमाके के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। समाचार एजेंसी ने इस शख्स को चरमपंथी बताया है। एजेंसी ने कहा कि धमाके में किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले इस घटना में कुछ लोगों की मौत होने की खबरें आई थीं। संदिग्ध इस्लामिस्ट चरमपंथियों ने माली के उत्तरी इलाके में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान के ठिकाने पर हमला किया है। इसमें चाड के कम से कम 8 सैनिकों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक कुछ सैनिक जख्मी भी हुए हैं। अगुएल हॉक स्थित अड्डे पर यह हमला रविवार सुबह हुआ। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी बयान के मुताबिक शांति सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कई हमलावरों की मौत हुई है। माली में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 30,000 से अधिक शांति सैनिक तैनात किए गए हैं। 2012 में माली के उत्तरी हिस्से में इस्लामिस्ट चरमपंथियों के कब्जे के बाद ये तैनाती की गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चमलिंग ने डोकलाम विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। दिन भर में हम बताएंगे कि चमलिंग ने बीबीसी से बातचीत में इस मुद्दे पर क्या कहा, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रवासी नीति को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने आंशिक कामबंदी को खत्म करने के लिए उन प्रवासियों को संरक्षण देने की बात की थी जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके बदले ट्रंप मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंड चाहते हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने आंशिक कामबंदी को खत्म करने के लिए दिए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कामबंदी है, जिससे अमेरिका में लगभग 8 लाख संघीय कर्मचारी प्रभावित हैं और उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसी कामबंदी को खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव लेकर आए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रस्ताव में इमिग्रेशन पॉलिसी पर अपने रुख में नरमी लाने के बदले अमरीकी मेक्सिको सीमा पर बन रही दीवार के लिए धनराशि जारी करने की मांग की थी। इस प्रस्ताव में अमरीका में रह रहे उन युवाओं के समुदायों को अगले 3 सालों तक अमरीका में रहने की इजाजत देने का जिक्र था जो कि अमरीकी नागरिक नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर चक शूमा इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रस्ताव में किसी तरह का समझौता नहीं कर रहे हैं। अब वह ड्रीमर्स और टीपीएस प्रोटेक्शन जैसे अधिकारों को देने की बात कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद ही छीना था। दरअसल ड्रीमर्स उन युवाओं का समुदाय है जो बचपन में अपने माँ बाप के साथ अवैध ढंग से अमरीका आए थे। इन युवाओं को अमरीकी नागरिकता तो हासिल नहीं है, लेकिन इन्हें अमरीका से डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये युवा अमरीका में नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इस समुदाय के अमरीका में नौकरी करने के खिलाफ रहे हैं। हालांकि मेक्सिको अमरीकी सीमा पर दीवार बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर काम बंदी होने के बाद ट्रंप के रुख में नरमी देखी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस भाषण में कहा है कि उनका ये प्रस्ताव काफी समझौतों से भरा है।
इट इज ए कंपैशनेट रिस्पांस टू द ऑनगोइंग ट्रेजेडी ऑन आवर साउथर्न बॉर्डर।
मैं अब इसे खत्म करना चाहता हूं और ये खत्म होने जा रहा है। ये चर्चाओं का विषय नहीं है, एक ऐसी दिल दुखाने वाली सच्चाई है जो सीमा के दोनों ओर मासूम लोगों को परेशान कर रही है। ट्रंप सरकार ने अपने प्रस्ताव में युद्धग्रस्त देशों से भागकर अमेरिका पहुंचे हुए उन 3 लाख लोगों को अगले 3 सालों तक वीजा देने और आपातकालीन मानवीय मदद कोष में $800 मिलियन जमा करने की पेशकश भी की है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अनंत प्रकाश।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
करीब 2 साल पहले भूटान के डोकलाम इलाके में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। दोनों देशों के बीच करीब 3 महीने तक तनाव की स्थिति बन गई थी। दरअसल चीन डोकलाम तक सड़क बना रहा था और इसे रणनीतिक तौर पर भारत के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। इस क्षेत्र की सीमा भारतीय राज्य सिक्किम से लगती है। भारत में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रखने वाले सिक्किम के सीएम पवन कुमार चमलिंग ने इस विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। बीबीसी बांग्ला सेवा के संवाददाता शुभज्योति घोष को दिए ईमेल इंटरव्यू में पवन चमलिंग ने कहा कि इस विवाद के दौरान उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, यह जानने के लिए मैंने अब से थोड़ी देर पहले शुभज्योति घोष से बात की।
देखिए, सिक्किम की चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है डोकलाम के बारे में, पहली बार उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये पूरी क्राइसिस की दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्किम गवर्नमेंट के साथ कोई जानकारी उनको नहीं दे रहे थे। सो ही क्लियरली सेड कि वी वर नॉट केप्ट इन द लूप, उनको अंधेरा में रखा गया था। और चौंका देने वाली बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमको जानकारी मिल रहे थे आम आदमी की तरह, सिक्किम गवर्नमेंट की डोकलाम क्राइसिस के बारे में टीवी न्यूज़पेपर मीडिया से जानकारी ले रहे थे, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं थे।
नरेंद्र मोदी की जो सरकार केंद्र में चल रही है, चमलिंग उस एनडीए का हिस्सा है, तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की कि वो सरकार से पूछें कि क्या विवाद है? करीब 3 महीने तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी वहां।
नहीं, उस बारे में वो कुछ बोलने के इनकार कर दिया और वो क्वेश्चन उन्होंने अवॉइड कर लिया। उन्होंने ये जरूर बताया कि डोकलाम क्राइसिस के दौरान सिक्किम की जनता के बीच एक आतंक की माहौल जरूर थे और सिक्किम बहुत कोशिश की उस टाइम कि इन इट्स कैपेसिटी वो देश की जो सैंक्टिटी सिक्योरिटी उनको अपहोल्ड रखे, उनको समुन्नत रखे, इनके लिए सिक्किम जरूर कोशिश की। और एक बात भी है, उन्होंने बताया कि एक क्राइसिस के एक सकारात्मक पहलू भी है और वो ये है कि सिक्किम की जनता के अंदर डोकलाम के बाद एक देश प्रेम का माहौल जरूर पैदा हुआ। और वो आपको याद ही है 47 के इंडिया के इंडिपेंडेंस के 28 साल बाद सिक्किम शामिल हुआ देश में एक रेफरेंडम की बाद, बाकी इंडिया से सिक्किम बहुत देर बाद इंडिया के साथ शामिल हुआ, भारत का हिस्सा बना। तो उन्होंने कहा तो ये डोकलाम क्राइसिस का एक सकारात्मक पहलू ये है कि इनका एक पेट्रियटिज्म का, एक देश
के लोगों का भारत से ज्यादा जुड़ाव हुआ। एक विवाद और है जो भारत और बांग्लादेश के बीच है, वो विवाद तीस्ता नदी को लेकर है, जो कि नदी शुरू होती है सिक्किम से। क्या इस विवाद पर, इस विषय पर भी चमलिंग ने आपसे कुछ कहा?
देखिए, ये मुद्दा मैंने जरूर उठाया था और ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, शायद यही वजह है कि ये समझौता को लेकर डायरेक्ट कोई कमेंट उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सिक्किम को ऊपर एलिगेशन ये आते हैं कि सिक्किम एक के बाद हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट तिस्ता के ऊपर बना है, जिसकी वजह से तिस्ता में पानी घट रहे हैं और ये तिस्ता सूख गया। यही वजह ममता बनर्जी ने भी इस्तेमाल किया, जब भी वो तिस्ता समझौता की जब भी वो विरोधिता करती है तब भी वो यही बोलती है कि तिस्ता में पानी है ही नहीं। उसके जवाब में मिस्टर चामलिंग ने यह कहा कि हमने जो भी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट तिस्ता के ऊपर बनाया है बहुत रिस्पॉन्सिबली बनाया है, एनवायरनमेंट परिवेश कहे, इकोसिस्टम कहे, इकोलॉजी कहे, उनको ख्याल रख के ही किया, उनको ध्यान में रख के ही हमने जो भी किया है सिक्किम के ऊपर बनाया है। मतलब उनको यही कहना है कि तिस्ता सूख गया, इनके इल्जाम अब सिक्किम के ऊपर नहीं दे सकते हैं।
ज्योति बसु का सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चमलिंग तोड़ चुके हैं पिछले साल, क्या इस बारे में उन्होंने कुछ कहा?
हाँ, उन्होंने जरूर कहा। उन्होंने कहा कि सिक्किम एक स्टेट है जो एंटी इनकम्बेंसी का जो थ्योरी हम बाकी देश में देखते हैं उनको खारिज कर दिया, उनको नकार कर दिया। उन्होंने कहा जो स्लोगन उन्हें 25 साल पहले चालू किया था, देश हमारा हिंदुस्तान और सिक्किम सुखिस्तान, अर्थात लैंड ऑफ पीस है सिक्किम, वही स्लोगन अब भी बरकरार है।
ये थे बीबीसी संवाददाता शुभज्योति घोष, जो बता रहे थे कि सिक्किम के सीएम के मुताबिक डोकलम विवाद के दौरान वो लूप में नहीं थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक की बीएसपी प्रमुख मायावती पर की गई एक विवादित टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बीएसपी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। सुनिए गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
हमको तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जज में लगती है, इनको तो अपना सम्मान ही नहीं।
उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विधायक साधना सिंह के इस बयान पर विवाद होना तय था। वाराणसी के करीब मुगल सराय से विधायक साधना सिंह चंदौली की एक रैली में बसपा और सपा के बीच हुए गठबंधन पर सवाल उठा रही थीं। इस दौरान उन्होंने साल 1995 में लखनऊ के गेस्ट हाउस में हुई घटना का हवाला देते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती को निशाने पर लिया और भाषा की मर्यादा लांघती गयी। इस बयान के कई हिस्से बेहद आपत्तिजनक हैं। जल्दी ही ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इस पर तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने साधना सिंह के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये बयान बीजेपी का स्तर दिखाता है।
दिखाता है कि बीजेपी कितना हताश हो गई है, कितना निराश हो गए, हताश हो गए कि उनको अब ये लग रहा है कि अब उनके पास एक भी सीट जीतने की अब ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी साधना सिंह के बयान की आलोचना की। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि मुगलसराय से भाजपा की महिला विधायक ने जिस तरह से आपत्तिजनक अपशब्द सुश्री मायावती जी के लिए प्रयोग किए हैं वो घोर निंदनीय है। ये भाजपा के नैतिक दिवालियापन और हताशा का प्रतीक है। ये देश की महिलाओं का भी अपमान है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी साधना सिंह के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने साधना सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी साधना सिंह के बयान का संज्ञान लिया है। आयोग उन्हें नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगेगा।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। इस बीच रिपोर्टों के मुताबिक साधना सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया है। उधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना लोकसभा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने आज बरनाला में एक रैली की और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पंजाबी सेवा के हमारे साथी सरबजीत धालीवाल भी वहां मौजूद थे, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
2019 के आम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बरनाला से रैली कर आज अपना चुनावी बिगल बजा दिया। इस रैली को संबोधन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे। दरअसल इस पूरी रैली के अगर देखा जाए तो तीन बातें अरविंद केजरीवाल के आज के भाषण में सुनाई दी। सबसे बड़ा मुद्दा जो था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी और 13 की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात, जो पार्टी में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जो पार्टी के अंदरूनी जो मतभेद चल रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इससे मजबूत है। तीसरा जो है पंजाब के मौजूदा सरकार जो है उसके ऊपर उन्होंने लोगों के साथ वादा खिलाफी करने की बात कही। दरअसल बरनाला जो है वो मालवे का एक बड़ा शहर है और ये संगरूर लोकसभा हलके में आता है जहां पर भगवंत मान मौजूदा एमपी और पिछली बार की अगर बात करें तो बड़े मार्जिन से भगवंत मान यहां से जीते। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मालवा के इस शहर से चुनावी बिगल जो है लोकसभा चुनाव के लिए आज यहां पर रैली के जरिए शुरू कर दिया। सरबजीत सिंह धालीवाल, BBC बरनाला।
आगे बढ़ते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाय एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार शिकायत गोवंश से किसानों और दूसरे लोगों को हो रही दिक्कत से है, सुनिए पूनम कौशल की रिपोर्ट।
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कई गांवों में लोगों ने फसलों को नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशुओं को सरकारी स्कूलों में बंद कर दिया। ऐसा ही एक गाँव है गौतम बुद्ध नगर जिले का महावड़। यहाँ पहुँचते ही मुझे तारबंदी किए खेतों में आवारा पशु फसल चढ़ते नजर आए। हालात ऐसे हैं कि लोगों को फसल पर पहरा देना पड़ रहा है। राजन देवी अपने खेत की रखवाली करती मिली।
इसमें कुछ नहीं है, सारा चरा हुआ है, हौसे होने लगे। आप भी देख रहे हो गाय बिजार अब भी टाइम भी मौजूद हैं। अब हम किसान भाई क्या कर सकते हैं? तो भी यही कर सकते हैं, एक दूसरे के खेत में से निकाल कर दूसरे में कर रख दो।
जंगल में बढ़ती आवारा गायों की संख्या की वजह बताते हुए किसान करणपाल सिंह कहते हैं,
जो ब्याती रहती है, दूध देती रहती है लगातार, तो किसान उसको अपना पालन पोषण करते हैं और जब खराब हो जाती है उसको जंगल में छोड़ देते हैं।
हम दूर दूर तक देख रहे हैं तारे जो हैं वो लगाई गई हैं। इनकी मुख्य वजह क्या है?
केवल और केवल पशुओं के लिए लगाए गए।
कितना खर्चा आ जाता है इन तारों को लगाने में?
35,000 रुपए 7 बीघे खेत है। बहुत परेशानी है, ये देखो जंगल में आप देख लीजिए, लोगों ने डेरा डाल रखे हैं।
खेती में बढ़ते तकनीक के इस्तेमाल की वजह से बैलों की उपयोगिता भी खत्म हुई है। अब किसान बछड़ों को खुला छोड़ देते हैं। इसकी एक आर्थिक वजह बताते हुए डेयरी किसान सुनील कुमार कहते हैं,
गाय का ये भी कारण है कि गाय का बच्चा बिक नहीं पाता और भैंस का बच्चा जो कसाईयों के चला जाता है तो कट जाता है, इसको कटने नहीं देते।
पालतू गायों और बैलों को जब खुला छोड़ दिया गया तो वो जंगल में आवारा हो गए और अब ये आवारा पशु सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं लोगों के लिए भी खतरा बन गए हैं। खेत से पशु भगाने गए सुनील कुमार के बेटे आशु पर हाल ही में एक सांड ने हमला किया।
मैं खेत पे गया था और मैं बिजार को निकाल रहा था और मैं काफी दूर भागा, वो मेरे पीछे भागा, उसने मेरी चोट मार दी और मैं कई दिन हॉस्पिटल में भी रहा था।
गांव की ही रहने वाली धर्मवती देवी भी ऐसे ही एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गयी।
खेत पे जा रही मैं सुबह सुबह, ये ड्यूटी जा रही, खेत के कोने पे पहुंची, वहीं खड़ा बैल और मैं पहले ही कह रही हूँ सुमन की बिजार ऐसा लग रहा है मारेगा। अब इतनी कह के निमटे, इतने तो आना है मोटरसाइकिल फेंक के मारी, वाई के ऊपर जाक पड़ी मैं मोटरसाइकिल के।
हमले के खतरे के बावजूद लोग अपनी फसलों की रखवाली करने खेतों पर जाने के लिए मजबूर हैं। शाम को जब मैं महावर से लौट रही थी तो रविंद्र गुज्जर हाथ में टॉर्च लिए खेत की ओर जाते मिले।
और भी लोग आएंगे, सहसा जाते रहेंगे रोटी वोटी खा के, तो हम 11 बजे तक जंगल में रहते, डंडा भी लाते हैं जी, टॉर्च भी डर जाते हैं।
सिर्फ महावड़ ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी हालात ऐसे ही हैं। ये पशु अब किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। इसका समाधान सुझाते हुए राजन देवी कहती हैं,
अब ये भी बेचारी जाए तो जाए कहाँ, इनका कोई किसी ने सरकार ने किसी ने भी इनको कोई साधन ऐसा नहीं किया कि जो इनकी समस्या हल हो जावे। इनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है, इनकी कोई ऐसी चीज सावधानी बरती जाए जो इनको कहीं कुछ हुआ मिल जाए, जैसे आश्रम बन जाए, उनमें खाने पीने की बसोबंद हो जाए।
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलने का ऐलान किया है, लेकिन राजन देवी जैसे किसानों को राहत तभी मिलेगी जब आवारा पशु गौशालाओं में पहुँच जाएंगे। BBC के लिए गौतम बुद्ध नगर के महावड़ गांव से पूनम कौशल।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
ममता कालिया हिंदी साहित्य की चर्चित लेखिका है। बीते दिनों उन्हें अपने उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। ममता कालिया से हमारे साथी प्रदीप कुमार ने की है खास बातचीत, आप भी सुनिए।
ममता जी, आपको सबसे पहले तो बधाई कि आपके उपन्यास को व्यास सम्मान मिला है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी।
मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लेखक केवल सम्मान के लिए नहीं लिखता, फिर भी आपकी नज़र में ये सम्मान कितना अहम है आपके लिए?
ऐसा है कि मुझे लिखते हुए समझिए हिंदी में 50 साल से ऊपर हो गए हैं, गंभीरता पूर्वक लिखते हुए, तो शीर्ष पर जाकर या उसके अंत में जाकर एक पुरस्कार अगर मिल जाता है तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं मानती मैं इसको। बस एक थोड़ा सा संतोष ये मिलता है कि चलिए किसी ने पढ़ा और किसी ने सराहा, क्योंकि अक्सर यह है कि मैं पुरस्कारों की राजनीति से बिल्कुल दूर रहती हूँ। मैंने बल्कि ये सारे जो एक पुरस्कार तंत्र और ये सारा एक दूसरे को सम्मान देने का जो तंत्र है, इसके विरुद्ध एक तरह से उपन्यास लिखा है कल्चर वल्चर, जो मेरा संसोला में आया था। मैं पुरस्कारों को बहुत अहमियत तो नहीं देती, लेकिन अब मुझे मिला है तो मुझे एक संतोष इस बात का है कि मेरी कुछ बात सुनी गई या मेरी कोई पुस्तक पढ़ी गई।
देखिए कि इस साल का ये व्यास सम्मान आपको मिला है, कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ सम्मान मिला, और ये दोनों बड़े नामचीन सम्मान हैं और ये महिला लेखकों को मिल रहे हैं। ऐसा चलन जो है इससे पहले साहित्य जगत में नहीं था, देखने को नहीं मिला था, इसको किस रूप में आप देखती हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस समय के परिदृश्य पे आपने देखा होगा कि महिला लेखक छाई हुई है। ये मैं नहीं कहूंगी कि ये महिला लेखन है, क्योंकि ना तो कृष्णा सोबती इस तरह से कोई महिला लेखन करती है और ना ही मैं महिला लेखन के कोष्ठक के अंदर बैठी हूँ। तो देखा जाए तो ये लेखन ही है, ये इत्तेफाक है कि ये दोनों महिलाओं को ये पुरस्कार मिले हैं। एक्चुअली तो ये इस पर निर्भर करता है कि परिदृश्य में कौन कौन लिख रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि इधर मैं देख रही हूँ कि अपनी ऊर्जा लोग बहुत ज्यादा न्यू मीडिया में खर्च कर देते हैं, जो लिखने की जो गंभीरता और एकाग्रता चाहिए वो लेखक अपनी इकट्ठी करके नहीं रखते हैं। और वो ये करते हैं कि अपनी सारी की सारी एनर्जी निकाल देते हैं, फेसबुक में निकाल देते हैं या ब्लॉग में निकाल देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये मुद्रित पुस्तक के प्रति अन्याय भी हो जाता है और लेखक भी अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से पहचान नहीं पाता।
आपने एक जिस ओर ध्यान दिलाया कि महिला कहानीकारों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, वो कहीं ज्यादा लिख रही है, इसकी कोई खास वजह आप देखती हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि पहली बार महिलाओं की बातों को ध्यान से सुना जा रहा है, उनकी पुस्तकें बिक रही हैं, उनकी कथ्य को सुना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि महिला जीवन के इतने सारे संघर्षों का 3/4 झेलती है कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आप महिला के रूप में ना भी कहें तो भी एक व्यक्ति के रूप में आप पूरी की पूरी भागीदारी कर रहे हैं समाज के अंदर, जो कुछ समाज में धाराएं चल रही है, जो संघर्ष हो रहे हैं, जो जो बदलाव आ रहे हैं, उन सबको आज जब बिल्कुल फ्रंट ऑफिस में बैठ के झेल रहे हैं, तो जाहिर है कि महिला के पास कहने के लिए बहुत कुछ है।
आपने संभवतः बॉम्बे में अपना अध्यापन का कैरियर शुरू किया और फिर आप इलाहाबाद आ गईं, सालों तक आपने पढ़ाया, कह लीजिए कि मिडिल क्लास की जो बिंब आपकी कहानियों में मिलते हैं उसमें आपके कामकाजी होने का रोल रहा है।
हाँ, बहुत बड़ा इसकी भूमिका है। मैं तो ये मानती हूँ कि हर स्त्री को किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए, भले वो अचार ही बनाती हो और बेच, क्योंकि जब तक आप किसी काम में लगे नहीं रहेंगे तब तक आपके मन मस्तिष्क में जो है वो नई लहरें नहीं उठेंगी, नई चुनौतियाँ आपके सामने नहीं आएंगी।
अब थोड़ी बात अगर आपके उस उपन्यास की करें जो अपने आप में एक दिलचस्प कथानक पे था और महात्मा गांधी के असर को आपने 3 पीढ़ियों तक उसमें दर्शाया है और न केवल दर्शाया में वो पढ़ा भी जा रहा है, तो उसका ख्याल कैसे आया था?
रवींद्र कालिया मेरे हस्बैंड भी लेखक थे, तो मैं रवींद्र कालिया को अक्सर बताती रहती थी कि मेरी दादी चरखा चलाती थी और इस बात का बहुत बुरा माना जाता था कि वो चरखा चलाती थी, क्योंकि हम अग्रवाल परिवार के हैं और अग्रवालों में चरखा चलाना एक किस्म का काम माना जाता है, सामाजिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मेरी दादी पान खाती थी और ये दोनों चीजें बहुत खराब मानी जाती थी, तो मेरे बाबा हमेशा मेरी दादी की आलोचना करते थे और तब यही कहते थे कि मुझे तो लगे कि ये जुलाहे की जाई है, वो ये कहते थे। तो मैंने कहा कि मुझे ये सारी बातें दादी की याद आती है, और मैंने देखा था कैसे वो थोड़ी थोड़ी बात में कहती थी, गांधी बाबा जी कहे कि ऐसा करना चाहिए, गांधी बाबा ये कहते हैं अपने हाथ के कटे सूत से कपड़ा पहनो। तो वो एक समझिए कि मुश्किल से साक्षर व्यक्ति और कैसे गांधी बाबा के विचारों से वो इतनी वो आंदोलित हो गई, यहाँ से मुझे पूरा अंदाजा आया और मुझे लगा कि मथुरा धीरे धीरे कितनी बदल रही। और थी मैं छोटी, लेकिन उसको जब मैं बाद में याद कर रही थी, फ्लैशबैक में जब मैंने याद किया, तो मुझे लगा कि मथुरा में बहुत से परिवर्तन जो आए वो महात्मा गांधी के विचारों के कारण आए।
आपने जिक्र किया कालिया जी का, जब वो थे तो अक्सर कहते ही थे कि ममता जी की पृष्ठभूमि जो है वो कल्चर वाली है और उनकी अपनी एग्रीकल्चर वाली, तो उनके साथ ने आपको बतौर लेखक कितना संवारा?
उन्होंने मुझे बहुत संभाला, बहुत लिखने की मुझे प्रेरणा दी उन्होंने। और ये होता था कई बार कि अगर किसी विषय के बारे में मेरे मन में शंका होती थी कि मैं ये नहीं लिख सकूंगी या नहीं लिखना चाहिए, तो वो मुझे साहस देते हो, कहते थे अरे बाबा शेर की तरह लिखो तुम, तो ये जो साहस देते थे। अच्छा एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर तो ये होता था मन में कह रहे अब तो ऐसे लिखेंगे कि कागज छेद हो जाएंगे।
वो खुद आला दर्जे के कहानीकार थे और उनकी कहानियां भी काफी चर्चित रही हैं, तो एक आपसी कंपटीशन तो घर में नहीं हो जाता था कि?
नहीं बिल्कुल नहीं, अगर कोई मतलब बात ऐसी है जो कि उनको भी अच्छी लगी मुझे भी अच्छी लगी, मुझे कहते मैं तो जा रहा हूँ चैन से सोने के लिए, तुम भी कुछ लिखना तुम्हें।
अब 3 साल हो गए हैं लगभग, जब आप
पूरे 3 साल हो गए,
पूरे 3 साल, तो उनके बगैर कह लें या उनकी स्मृतियों के साथ आप इन दिनों क्या लिख पढ़ रही हैं?
देखिए मैं इन दिनों उन्हीं के ऊपर एक किताब लिख रही हूँ जिसका नाम है रवि कथा। रवि के बारे में तो एक महागाथा मेरे अंदर चलती रहती है, मैं कहा करती थी रवि अनंत रवि कथा अनंता।
व्यास सम्मान हासिल करने वाली ममता कालिया से बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार की ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अब खेल की खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। तो आदेश जी, क्या विराट कोहली टेनिस कोर्ट का रुख करने वाले हैं? टिप्स ले रहे हैं आजकल फेडरर से, तस्वीरें छाई हुई हैं।
जी हाँ बिल्कुल, दरअसल अनुष्का शर्मा के साथ वो फेडरर से मिलने पहुँचे और उनके अलावा विराट कोहली के अलावा शिखर धवन और रोहित शर्मा ने भी कुछ ऐसी फ़ोटो डाली। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में जो जीत मिली भारत को ऐतिहासिक, थोड़ा सा मूड चेंज करना चाहते थे क्योंकि अब न्यूजीलैंड से बुधवार से जो 5-1 दिवस
23 तारीख से शुरू हो रही है सीरीज और न्यूजीलैंड में मुकाबला कुछ टफ माना जा रहा है।
जी हाँ, ये सबसे कड़ी परीक्षा होगी क्योंकि पिछले दौरे में भारतीय टीम 4-0 से हारी थी 5 मैचों की सीरीज।
लेकिन अभी श्रीलंका को भी न्यूजीलैंड ने बड़ा परेशान किया है।
जी हाँ बिल्कुल, अपने घर में तो न्यूजीलैंड सवा शेर है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो फेडरर के साथ तस्वीर जरूर खिंचवाई विराट कोहली ने, लेकिन फेडरर का पत्ता चौथे दौर में साफ हो गया। पिछले चैंपियन भी रहे फेडरर, तीसरी वरीयता हासिल फेडरर को 14वीं वरीयता हासिल ग्रीस के स्टेफानोस सिपाव ने 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 से हराया, लेकिन दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल अपना मुकाबला आसानी से जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने चेक कर रहा
है कि दिग्गज अभी लाइन में बने हुए हैं।
जी हाँ, टॉमस बर्डिट को 6-0, 6-1, 7-6 से हराया। इसके अलावा रूस की सदाबहार खिलाड़ी बारिया शारोपोवा भी आज हारकर बाहर हो गई। और महिला एकल वर्ग में भी बड़ा उलटफेर हुआ जब 2016 की चैंपियन दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर गैर वरीयता हासिल अमेरिका की डैनियले कॉलिंस से हारकर बाहर हो गई। लेकिन अगर क्रिकेट की बात एक बार फिर से की जाए तो पाकिस्तान ने कल पोर्ट ऑफ एलिजाबेथ में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। इस मैच की सबसे बड़ी बात यह थी, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखी जाए तो हाशिम आमला ने अपना जो 27वां शतक था वो 167वीं पारी में बनाया और इस तरह से उन्होंने विराट कोहली के 169 पारियों में 27 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। वैसे कोहली के नाम 39 शतक हैं।
जी काफी आगे निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और अब आखिर में मुख्य समाचार आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में सरकार की आंशिक कामबंदी को खत्म करने के इरादे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने खारिज कर दिया है। समझौते के इरादे से ट्रंप ने प्रवासन नीति को लेकर यह प्रस्ताव भेजा था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मंगलवार को शुरू होने वाले रूस दौरे के विरोध में मॉस्को में लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग विवादित द्वीपों को जापान को सौंपे जाने की संभावनाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं। सदर्न अफ्रीकन रीजनल बॉडी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के विवादास्पद राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करने वाले फेलिक्स शिशेकेडी को बधाई दी है और कांगो के लोगों से अपील की है कि वो उनकी जीत को स्वीकार करें। ब्रिटेन के मंत्री लियाम फॉक्स ने आरोप लगाया है कि कुछ सांसद ब्रितानी लोगों से ब्रेक्जिट को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता यही है कि आयरलैंड के साथ लगती सीमा पर बैरियर को लेकर वैकल्पिक रास्ता सुझाया जाए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।